प्रिय भक्तजन, भाइयों बहनों, बच्चों, बालक बालिकाओं, समस्त संघ सदस्य एवं भक्तों, गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। कल भी हमने ये श्लोक किया था। भगवान क्या कहते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा अपना सनातन अंश है। हम सब भगवान के अंश हैं। अंश का मतलब होता है कि हम वैसे ही हैं जैसे भगवान है, हम कोई काम नहीं है। लेकिन हमने पिछले अध्याय में किया कि हम गुणों में फंस जाते हैं, हम गुणों में बंध जाते हैं, इसलिए हम अपनी उस भगवत सत्ता को, भगवत्ता को नहीं पहचान पाते और मैं मेरा करते हुए सिर को ढूंढते हुए संसार से चल बसते हैं। फिर जन्म होता है, फिर मरण होता है, बस यही काम लगा है मनुष्य को। लोभ लालच छोड़ता नहीं, काम क्रोध छोड़ता नहीं, इसलिए उसको ये पता ही नहीं चलता मानव को कि मैं भगवान का सनातन अंश हूँ। अब मैं इसे अगला श्लोक पढ़ती हूँ, 8वां श्लोक। शरीरम यद बाप नोति यद चापित क्रांति शरा रेत गतानि संयाति वायु गंध निवाशात। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर चेर ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से मन से इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त है उसमें चला जाता है। ये है जन्म मरण वाला श्लोक। कि क्या है, भगवान बताते हैं कि जैसे वायु, वायु अपनी वायु में अपने कोई गंध नहीं है, लेकिन वो अच्छे स्थान से जाए तो कहते कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, और जैसे वो गंदे स्थान से जाती है तो कहते हैं कितने दुर्गंध आ रही है, हम नाक तक बंद कर लेते हैं, ना वायु का अपना कुछ नहीं है। ऐसे ही जीवात्मा जो है ना, जो मनुष्य के शरीर के भीतर हमारे भीतर है, जिस शरीर को छोड़ता है मन से क्या ले जाता है, या दुर्गंध या सुगंध, जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो सुगंध ले जाता है उसकी जीवात्मा, और जिसने बुरे किया है वो दुर्गंध ले जाता है। और फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें वो गंध भी चली जाती है, मतलब गंध मतलब शुभ और अशुभ कर्म। अब इसकी व्याख्या है, वास्तव में शुभ चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो ही नहीं सकता। आत्मा नहीं जाती है, क्या कहा, जीव आत्मा जाती है। यहाँ आपने अच्छे से इस बात को समझना है कि आत्मा तो कभी जाती आती नहीं है, लेकिन जाता कौन है, जीव आत्मा। और जीव आत्मा क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, चार चीजों का बनता है अंतःकरण, और इसके साथ ही हमारा, इसी को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। तो ये शरीर जाता साथ क्या ले जाता है, साथ जाती है प्राण वायु, ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं छोड़ते हैं ये बाहर निकल जाती है, और कारण शरीर जाता है जो हमने शुभ और अशुभ काम किए हैं। आत्मा कभी नहीं आती जाती है, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। वैसे भगवान जो है वो अचल है, समान रूप से सर्व व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं भगवान को। तो आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए हम भी क्या हैं, अचल हैं, समान रूप से सब जगह हम भी हैं। लेकिन हमने अपने को, कल हमने एक जगह आपको एक उदाहरण दिया था, कल या परसों कभी भी, एक घड़े का, कि एक घड़े में पानी भर के रख देते हैं तो कहते हैं घड़े का पानी लाओ, लेकिन पानी तो वो गंगा जी का है, पर वो घड़े में बंद गया इसलिए वो पानी बन गया घड़े का पानी। तो इस तरह से ही हमारी जीव आत्मा, हमारी आत्मा जब किसी शरीर में बंध जाती है तो वो जीव आत्मा कहलाती है, और जीव आत्मा ही आती जाती है, आत्मा नहीं। अच्छा, शरीरों का ग्रहण और त्याग परीक्षण एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश का आदि से परीक्षण नहीं हो सकती है। आत्मा को न देश का ना समय का कोई बंधन है, पाबंदी है, वो सब जगह व्यापक है। इसलिए क्या आता जाता है, जीव परंतु जब ये आत्मा प्रकृति के कारण शरीर से तादात्म्य कर लेती है, यही आत्मा जो हमारे में है, भगवान का अंश जो है, ये शरीर को सिर्फ अपना संबंध जोड़ती है, ये सोचती है कि मेरा शरीर, मैं शरीर हूँ, शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। जब हम शरीर से बंध जाते हैं तो हम आते भी हैं और जाते भी हैं, और आता जाता कौन है, हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु प्राण में लिप्त रहता है, क्योंकि जैसे वायु में लिप्त है लेकिन बाहर से सुगंध और दुगंध लगते, ऐसे हमारे शरीर से अगर हम लिप्त हों तभी हमें कुछ लगता है ऐसा, वरना हम निर्लिप्त हैं। श्लोक में श्रोतम चक्षु स्पर्शन निरसन घ्राण निर्वते अधिष्ठाय मनुष्याय विषयाणु सेवते। ये जीवात्मा मन का आश्रय लेकर लसन और ध्यान इन पांच इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। अब कहते हैं कि जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को दो तीन बार बताया है कि 24 तत्व होते हैं जो शरीर के साथ, और फिर जब आत्मा आती है या परमात्मा या तो फिर ये जीवात्मा बन जाती है। ये जीवात्मा किसका आश्रय लेता है, मन का। वो शत्रुते कान नेत्र आंख त्वचा रसना और ज्ञान, ज्ञान तना रसना थी जीव त्वचा त्वचा ही, तो इन पांच इंद्रियों का सहारा लेता है जीवात्मा, मन का और इन पांच इंद्रियों का। और फिर क्या करता है, मन विषयों का सेवन करता है। हाँ हाँ, कितना स्वाद है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, कितना नरम है, कितना देखने को अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, अच्छा बुरा सब हमारे मन का आश्रय लेते हुए जीवात्मा विषयों का भोग करता है। व्याख्या, जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे पहले शरीर में विषयों का राज तो सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर भी रहेगा, एक दुकान छोड़ी चाहे दूसरी लगाई, लेकिन आदमी का स्वभाव तो भी ऐसे ही, जब हम एक शरीर छोड़ते हैं दूसरे में जाते हैं तो स्वभाव तो पीछे से लेके जाते हैं, इसलिए वहाँ भी हम विषयों का सेवन करते हैं। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंची नीचियों में बढ़ता रहता है, कारण के विषयों का सेवन करने से स्वयं की बोलता और शरीर संसार की मुख्यता हो। जब मनुष्य विषयों का सेवन करता है तो अपने आप को बड़ा मानने लगता है, आत्मा की गोमता हो जाती है, आत्मा को तो छोटा क्या देखता है, अपने शरीर को और संसार को महान समझने लगता है बड़ा। श्लोक 10 उत्क्रांतम चित्रम्बापी गुणजानम गुणान्वितम ये मूढ़ानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित होते हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जो तो मूर्ख है, जिनको ज्ञान है उनको नहीं पता लगता इन बातों का। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। देखो पहले हम मरते हैं छोड़कर जाना, फिर हम जन्म लेते हैं दूसरी, और तीसरा फिर क्या करते हैं, जन्म लेने के बाद संसारिक विषयों को भोगते हैं अच्छे बुरे को, लेकिन जो बीच में रहने वाला कौन है, वो जीवात्मा वो एक ही है। ये बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। पीछे है ना तीन गुण, उनसे वो बंधा रहता है। भगवान ने पिछले श्लोक में पांच क्रियाएं बताई थी, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना और सुनना। और इनको इन दोनों के नाम क्या है, स्वप्न, नेत्र, त्वचा, रसना और ग्रहण। और इस श्लोक में तीन क्रियाएं बताई है, इसमें तीन ही बताई, कौन कौन, शरीर को छोड़कर जाना, फिर दूसरे में स्थित होना और फिर भोगन। इन आंखों में कोई भी क्रिया नहीं होता, पांच पीछे थी और तीन अब आ गई, आठ हो गई। ये क्रियाएं आती जाती रहती है, पर आत्मा जो है वो निरंतर है। क्रियाएं तो आठ हैं, और इन सब में स्वयं एक ही रहता है, इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वो स्वयं नित्य होता है, ये नियम है। ज्ञान तो होता है देखो हमको, अनेक अवस्थाओं में स्वयं आत्मा एक रहता है। एक व्यक्ति अनेक अवस्थाओं में जाता है, यदि स्वयं एक न रहता है तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता। परंतु ऐसी बात है, प्रत्यक्ष होते हुए भी देखते नहीं, तो प्रत्युत ज्ञान उपनेतन वाले योगी मनुष्य देखते हैं। ज्ञानियों को उसका भाव का भाव सत्ता को पता लगता है कि ये क्या है। श्लोक है दस हो गए। अब मैं आपको काल ग्यारह श्लोक पढ़कर सुनाऊंगी। आप गीता के गूढ़ ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको इतना गूढ़ ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, ये इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है जिसको आप समझना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, जानना चाहिए। गीता के 18 अध्याय है, जिसमें प्रत्येक अध्याय में 6-6 18 अध्याय, उसमें 6 कर्मयोग के, 6 भक्ति योग के और 6 ज्ञान योग के। अभी हमारा ज्ञान योग का चला हुआ, हमने इसमें ज्ञान जाना, हमें ज्ञान हुआ, हमने नॉलेज प्राप्त किया कि आत्मा क्या है, जीव आत्मा किसको कहते हैं, वही आत्मा जीव आत्मा कैसे बन जाती है, गुण क्या है, इंद्रियां क्या है, कारण शरीर क्या है, मन बुद्धि चित्तंकार क्या है, ये सब विषयों के बारे में हमने वही मानती जान लिया है। अब मैं अगले श्लोक में आपको कल बताऊंगी आगे आत्मा के विषय में, या भगवान ने जो अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान दिया है। अब मैं आपको श्री महाराज की छोटी सी किताब की ओर ले जाती हूँ, जहाँ कल हमने एक श्री रामलाल सो जी का क्या पढ़ा था, एक एपिसोड, हेड मास्टर जी के घर जाना। ये हेड मास्टर जी मोल में रहते थे और ये सूद फैमिली के थे, और रामलाल जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे पहली क्लास में पढ़ाया था। जब रामलाल जी बड़े हो गए, सर्विस लग गए, लेक्चरर बन गए, तो हेड मास्टर जी जीवित थे और अपने घर में रहते थे। हेड मास्टर जी रामलाल जी बन गए जनगणना के लिए, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि हमारे घर आना, भोजन पाना, कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। और फिर बैठे बैठे हेड मास्टर जी ने सारी कथा या वार्ता के पीछे उनको सुनाई, तो रामलाल जी ने कहा कि सिद्ध हो गया कि आत्मा किसी भी रूप में फिर से पुनः अपीयर हो सकती है, प्रकट हो सकती है और होती है, कुछ उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए। लेकिन सिद्ध महात्मा जो होते हैं वो तो वैसे का वैसा ही कारण शरीर लेकर के आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता है कि वो है या कोई और। जैसे ही स्वामी जी महाराज जी आए, अगर हर मास्टर ने तो बताया कि उनके पिताजी एक साधु के रूप में है, पिताजी तो साधु नहीं थे, लेकिन ये छोटी आत्माएं किसी के अंदर घुस करके आती है और अपने जीवन की लालसा रह जाती है, उसको पूरा कर लेती है। लेकिन सिद्ध महात्मा लोग जिनकी ट्रिमेंडस विल पावर होती है बहुत, और जिनको परफेक्ट नॉलेज होता है, वो लोग जब अपीयर होते हैं, उनकी फिजिकल बॉडी तो नहीं होती है, होती तो उनकी भी सूक्ष्म शरीर ही होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही लगते हैं जैसे फिजिकल बॉडी है और हमारे सामने खड़े हम बातें कर रहे हैं। इट अपीयर्स टू बी द रियल बॉडी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑफ द सोल, मतलब उस आत्मन का आत्मन की विल पावर इतनी सक्रम होती है कि हमें वो शरीर वैसा ही दिखता ही अलग लगता है। जैसे मुझे मैंने सुनाया था कल कि स्वामी जब प्रथम बार आए, प्रथम प्रकट हुआ, तो मुझे भले शांति लगा कि स्वामी जी ही है। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मेरे मन में यह रहा कि मैं अकेली हूँ, मंदिर में कोई दूसरा आदमी भी नहीं है, तो थोड़ा सा शक जाती रही। लेकिन वो तो बिल्कुल भले उनका वो सबतल बोली थी, सक्षम शरीर था, लेकिन मुझे तो वही हड़ मास, वही चाल, वही चलन, वही पाँव, वही धोती, वही सब कुछ था। तो अब सिद्ध महात्मा जो है वो ऐसे थे, तो स्वामी जी तो सिद्ध महात्मा। अब मैं आपको आगे ले जाती हूँ स्वामी योगानंद जी के विषय में। स्वामी योगानंद जी ने अपने बायोग्राफी में जो लिखा है, रामदास जी उसको यहाँ लिखते हैं, फिर से बताते हैं। द क्रिमिनली फेमस स्वामी योगानंदास गुरु स्वामी केशवानंदा जी सच सिद्ध पुरुषा, वो ऐसे ही सिद्ध पुरुष है जैसे कि हमने अभी ऊपर पड़ा। He appeared with the same body clothes, body शरीर था, वही कपड़े थे, अपने डिसाइपल के आगे, किसके, योगानंद के आगे। Some month after he had left, कुछ महीने बाद, जैसे मैंने बताया कि कुछ महीने बाद, आठ नौ महीने बाद, मुझे तो महीने की भी याद थी, डेट की भी याद, तो वो ऐसे ही प्रकट हुए, ऐसे बोल नहीं है, ऐसे ही स्वामी जी भी प्रकट हुए थे। स्वामी केशवानंदा सेट योगानंदा, क्या कहा, केशवानंद गुरु योगानंद शिष्य। डोंट थिंक दैट आई हैव कम ओनली विद एस्टर बॉडी, ये मत सोचना कि मैं सूक्ष्म शरीर ही हूँ। आई हैव कम विद फुल फिजिकल बॉडी, मैं तो ये फिजिकल शरीर लेकर ही आपके सामने आया हूँ। यू कैन टेस्ट बाई हगिंग, आप मुझे गले से हगिंग नहीं, मुझे गले से लगा के देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि मैं सूक्ष्म हूँ या फिजिकल हूँ, स्थूल हूँ, फिजिकल हूँ या स्थूल। गेट योर सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप को संतुष्ट कर लो। आई एम द सेम केशवानंदा, ऐसा कहा उन्होंने, जैसे स्वामी जी मेरे पास आए, खाया पिया, बैठे, लोई मांगी, है ना, वो लगता है वो तो स्वामी जी है, समझा। देता तो ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से बात भी की। स्वामी कृष्णानंद देव सरमन, उन्होंने उनको उपदेश भी दिया। हालांकि स्वामी जी ने, उत्तराजी को याद होगा कि उत्तराजी में हमारे साथ थे, उत्तराजी थी, सरला जी थी, मैं थी, जो स्वामी जी डिस्पेंसरी में गए स्वामी विवेक जी के पास, तो हम भी पीछे पीछे गई थी, तो उन्होंने हम सबको सरमन दिया था, उपदेश दिया था। योगानंदा टू मेक हिज नॉलेज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, देन ही डिसअपीयर्ड इन हिम। अच्छा, ये स्वामी जी ओपन यू टू से टू अवर मदर, रामलाल जी लिखते हैं कि स्वामी जी प्राय कहा करते थे हमारी माता जी को, बहन आप जब आपको इस दुनिया, बहन योर टाइम टू लीव दिस वर्ल्ड कम्स, आई सेल माई सेल्फ कम एंड टेक यू टू द हेवन। माई मदर ऑफन क्लियरली टोल्ड माई फ्रेंड्स एंड रिलेशंस अबाउट दिस प्रोमिस ऑफ स्वामी जी। माई फ्रेंड एम पी भार्गव, माई फ्रेंड भार्गव, एम पी भार्गव, हु यूज टू कम डेली, जो मेरे घर में रोज आता था, तो मेरे माता जी के पास बैठता था, टोल्ड मी दैट माता जी हैड रिपीटली टोल्ड हिम अबाउट ऑल दिस। वो रामलाल जी को बताता था कि आपकी माता जी रोज ऐसा कहा करती है कि जब मैं जाऊंगी तो स्वामी जी आएंगे। देन स्वामी जी लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हिज हेवनली अबोर्ड इन 1987। आई ओपन यू टू थिंक हाउ गुड स्वामी जी कैप हिज प्रोमिस नाउ। मे बी स्वामी जी माइट हैव सेड टू कीप माता जी होपफुल, बट माता जी हैड फुल फेथ इन हिम। माता जी टोल्ड मी दैट स्वामी जी कुड कम इन एनी फॉर्म। आई यू टू बी साइलेंट सीइंग द डीप एंड प्रोफाउंड फेथ ऑफ माता जी। देखिए माता जी को कितना विश्वास था कि वो रामलाल जी को कहा करती थी कि जब मैं जाऊंगी तो स्वामी जी मुझे लेने आएंगे। प्रणाम नारद जी कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी थी कि माता जी को कितना विश्वास है, विश्वास की तो बात ही नहीं है। माय मदर कैन फाइनली हील इन नवंबर 1995। शी वाज सफरिंग फ्रॉम एसाइटिस एंड ड्रॉपसी। डॉक्टर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल, इट कांट बी क्योर्ड। The treatment also continued and brothers, sisters gathered at home. Time passed on, everybody tried to serve Mataji as best as he could. It was December 14th, 1995. There is a temple in Guntur near Hathithan, near Shri G.L. Sue's residence. He met a Babaji there. After talking for some time, Sri J.L. Sood brought Babaji to his house. He stayed with Sri J.L. Sood for one day. He was totally resembling Swamiji in his style of talk, sitting and talking. Next day, Babaji expressed his wish to visit Vaishno Devi temple. Sri J.L. Sood came to the temple along with him. On reaching to the temple, he made a Dandavat Pranama to Gita Ma. Then they sat in the Satsang Bhavan and talked for some time. Babaji said to Gita Ma, I want to visit your home also. Sri Gita Ma said, my mother is seriously ill. Babaji said, I have to meet her also. Let us go and do our duty. Babaji along with Gita Ma and Sarla Ogra, Kimte Sarla Ogra, came to our house on 16th December 1995. थोड़ा गलत है, 15th लिखा है, 16th है। श्री ओगरा एंड हिज मिसेज आल्सो एक्वापनाइर माजी। देन दे केम एंड सैट इन अवर ड्राइंग रूम। आई फेल्ट इन द हार्ट ऑफ हर्स एज स्वामीजी हैड हिमसेल्फ रियली अपीयर्ड इन दिस होम। Like Swamiji, he had only one chadar on his body and no other clothes. Style of talking and sitting was the same. Some oranges in the plate were offered. He distributed the 1/4 part of oranges to everybody, as Swamiji himself used to do. Swamiji used to pick up 2 parts in the end of one for himself and one for me. I thought in my heart that if he was actually Swamiji, he would do the same thing in the end. To my surprise, he picked up 2 parts in the end, gave me one and took one for himself. I was extremely happy that Swamiji has actually come to keep his promise given to Mataji. I also understand that since Swamiji has reappeared, there is not much time left for my mother to leave this world and go to heaven. On thinking this idea, I felt sad. I said that our beloved mother will no more be with us, blessed with her, Sri Baba. Then Babaji said, let us meet Mataji. Where is she? We went along with him to inside the room where Mataji was sleeping. He bent over mother and said, Mataji, open your eyes. Baba has come to take you to keep his promise. The time for leaving the world has come. Be ready to go and continue saying Ram, Ram, Ram. He took some devotee from his bag and made slow massage near the forehead of Mataji and said, everything will be okay. He asked for Ganga Jal and gave 2-3 spoonfuls to Mataji and asked all of us to offer Ganga Jal to Mataji. Then we went to another room. He told me confidentially that only 24 hours were left. She would be given mukta the next day. He told us to give Antim Dan and do Kanya Pujan by Mataji, which has been done. He didn't take any food. He took some fruit and then he been at a cup of tea. Mrs. Zogra had a camera with her. She requested to take some photographs. We went out in quarter and some snaps with Babaji. Some group photos and some single with Babaji. But when the film was went, we were astonished that the snaps taken with Babaji were all vanished. However, the other snaps taken by the same camera were intact. Then Babaji said, "No, I want to move." All of us came up to the road to say farewell to him. He stood on the roadside in front of our shop and started looking around Hitler's house. Who was coming to meet us? Babaji said, "Wait, let this devotee come here." Ram Shital came and bowed down his feet and said, "Maharaji, I am very troubled. I am not getting cured in spite of best treatment." Sri Ram Shital was suffering for eczema and it was spreading all over his body. Babaji put his hand on Ram Shital's head and said, "Don't worry, your thing will be okay." It was really a miraculous Ashirvada. After this day, Sri Ram Shital began to be cured gradually, and with some time he was fully cured. Two boys were sent with Swamiji to escort him to the bus stand and get a ticket for him and arrange for his seat in the bus for where he wanted to go. When he turned from the bus stand, the boy told us that got him a seat in Kulumundi bus. The bus had to start after some time. The boys went to restaurant to take tea, and when they came back, they found the bus was there, but the Babaji was not there. They searched for him all over the bus stand, but all in vain. Babaji was not found anywhere. The boy then came back to home. So in this song, he reappeared in the form of Babaji and kept his promise given to Mataji that he would personally come to take her to heaven. Adi Shankaracharya had also given a similar promise to his mother before taking up sannyasa, that he would come to see his mother at the last time when she will be leaving the world. When the time came, Adi Shankaracharya was somewhere near Gangotri in Himalayas, and it was in no way possible to reach Kerala through the forests and wilderness, so he did this job by dint of astral body. The Sukshum Sharira, he changed his body into subtler light, Sukshum astral body, by the power of the meditation, and appeared in his home place where his mother was on death set. That bed with Mataji Shankaracharya ji ke mother. Aur wo Gangotri ka hai wo kya? एक बिगिनिंग और एक एंड है। और क्या कहा शंकराचार्य जी ने, मदर योर शंकर हैज कम टू कीप हिज प्रॉमिस, प्लीज टेल मी इन विच फॉर्म यू वांट टू सी रियलाइज द ऑलमाइटी। माता जी आप बताओ आपको कैसे भगवान को देखना है, किसको देखना है। द मदर सेड, शंकर आई वाज ओनली वेटिंग फॉर यू। Now by your yoga power, let me realize the self and almighty in all forms so that I may leave this world perfectly contented. So Mata ne kaha ki main to apni atma ka anubhuti chahti hu aur Bhagwan ki anubhuti aur sab roopon mein, taki main santusht hokar ke duniya ko chhodu. Adi Shankaracharya, by his supernatural powers, made his mother a light. So Adi Shankaracharya ji ne kya kiya? कि अपनी सुपर अलौकिक शक्तियों के द्वारा अपनी मदर को जो कुछ माता जी को जो कुछ वो चाहती थी उनको रियलाइज करवाए अनुभूति करवाए आत्मा एंड ऑलमाइटी एवरी एटम ऑफ द वर्ल्ड एंड शोर हर ओल्ड इनकार्नेशंस ऑफ द गॉड. और क्या बताया कि भगवान जो है आत्मा आत्मा और परमात्मा ऑलमाइटी हर जगह है एवरी एटम हर कण में है और चोर हर. और उसको क्या दिखाया भगवान के सारे इनकार्नेशन अवतार जो आजकल हम विष्णु पुराण में देख रहे हैं कि he left the world completely satisfied and in meditation of the Almighty. तो उनके माता जी भी बड़े संतुष्ट होकर के और भगवान के ध्यान में चली गई. आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी गीता